हमारे बीच सभा में विराजमान है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी डॉक्टर सविता दीदी। तो हम आदरणीय सविता दीदी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी जी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपने मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट की, फिर आपने कोटा, उदयपुर, गुंगरपुर इत्यादि स्थानों पर अपनी प्रैक्टिस की। इसके पश्चात 1991 में आप माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को आपने ज्वाइन किया और मेडिकल ऑफिसर के पद पर आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। फिर आप ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के मेंबर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात कि आपने 2007 तक आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के पर्सनल फिजिशियन के रूप में आपने सेवाएं दी हैं। आप ब्रह्म कुमारी के महिला विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपने भारत के अलावा यूके, यूएसए, जापान, चाइना, हांगकांग, मलेशिया इत्यादि स्थानों पर हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड रीमेडिटेशन पर कई प्रोग्राम दिए हैं। आपने नेशनल लेवल पर कई महिला विंग के प्रोग्राम भी किए हैं। महिला जागृति और आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर कई आपने अभियानों का भी आयोजन किया है। आप ब्रह्म कुमारी के फैकल्टी मेंबर हैं और बहुत ही सुंदर कई विषयों पर आप ट्रेनिंग देते हैं। आपके पसंदीदा विषय हैं तनाव प्रबंधन, मेडिटेशन एंड मेडिसिन, क्रोध प्रबंधन, सकारात्मक चिंतन, संबंधों में मधुरता कैसे आए। ऐसे कई संस्थाओं में आपने लेक्चर दिए हैं, जैसे बिरला सीमेंट, श्री सीमेंट, ONGC, IFCO, रोटरी एंड लायंस क्लब, ऐसे कई संस्थाओं में आपने जाकर अनेक आत्माओं को प्रशिक्षण दिए हैं। तो आइए हम आदरणीय सविता दीदी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और अभी हम सुनेंगे दीदी के मुखाग्र बिंदु से ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा ने एक अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, जिसका पूरा नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। और इस यज्ञ में हम 5 विकारों की आहुति देते हैं, या कहेंगे अपनी बुराइयों की आहुति देते हैं। और आहुति देने के बाद जो हमें नया जन्म मिलता है, अलौकिक जन्म मिलता है, वो जन्म है ब्राह्मण जन्म। दुनिया में भी लोग यज्ञ रचते हैं, लेकिन वो स्थूल यज्ञ हैं, जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तिल जौ घी स्वाहा करते हैं और उस यज्ञ से अपनी मनोकामनाएं पूरा करना चाहते हैं। या कोई आपदा या विपदा है तो वो टल जाए, इस भाव से वो यज्ञ रचे जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इस अविनाशी रुद्र यज्ञ से हमारी जन्म जन्मांतर की मनोकामनाएं पूरी हो जाती, और एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए। तो ये जो ब्राह्मण जन्म है, जो अलौकिक दिव्य जन्म है, जिसे मर्जीवा जन्म भी हम कहेंगे, और जीवा माना इस पुरानी दुनिया से और पुराने संस्कारों से हम मर गए, और संगम युगी अब हम हैं, यानी कलयुग से हम निकल आए हैं। जैसे वो कृष्ण का चित्र दिखाते हैं ना, कि वो कलयुग को तो लात मार रहा है और उसके हाथ में क्या है, स्वर्ग का गोला है। तो हम, हमारे पांव जो हैं वो कलयुग की तरफ है, माना कलयुग से हम निकल गए और अभी हम वर्तमान में संगम पर हैं, और हमारा मुख किस तरफ है, सतयुग की तरफ है। तो अगर सचमुच पुरानी दुनिया से हमारा किनारा हो गया है, तो फिर हम इस नए मर्जीवा जन्म में, जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो ब्राह्मणों की पहली विशेषता है ब्रह्मा मुख वंशावली। मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है, यानी जन्म से ब्राह्मण है कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई जन्म से भी ब्राह्मण होंगे, लेकिन कर्म से ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख से जन्म लिया तो हम सभी बाबा के बच्चे, चाहे किसी भी नाम रूप देश काल वाले हैं, किसी भी जाति के हैं, भाषा के हैं, लेकिन सभी सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी सच्चे ब्राह्मण हैं, यानी कर्म से ब्राह्मण है, नाम से ब्राह्मण नहीं। जो नामधारी ब्राह्मण है आज की दुनिया में, जन्म से जो ब्राह्मण है वो जरूरी नहीं है कर्म से भी ब्राह्मण है। आज उनके कई कर्म ऐसे हैं जो ब्राह्मण ना कहेंगे नाम बदनाम करने वाले हों, खान पान अशुद्ध हो चुका है, और जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का भी वो इतना पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मणों की जो भी नियम मर्यादाएं हैं का पूर्ण पालन करते, बाबा की श्रीमत पर चलने का हम पुरुषार्थ करते हैं। और ब्राह्मणों की विशेषता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना। तो बाबा ने अमृत वेले का विशेष महत्व हम ब्राह्मणों को दिया है कि ये वेला वरदानी वेला है, और इस समय बच्चों को सहज ही बाबा से शक्तियों के वरदान प्राप्त होते हैं। तो जो अमृत वेले के महत्व को जानते हैं और उस महत्व से बाबा को याद करते हैं और पावरफुल अमृत वेला करते हैं, उनको बाबा के स्नेह और शक्तियों की पालना अमृत वेले ही मिल जाती है, और सारा दिन फिर उससे उनको स्वतः सहयोग मिलता रहता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे बाबा के वरदानों से ही हम चल रहे हैं। लेकिन अगर अमृत वेला हम मिस कर देते हैं या अमृत वेला हमारा कमजोर होता है, तो उसका असर पूरे दिन पर फिर देखने में आता है कि हमें छोटी छोटी बातें भी फिर बड़ी लगती हैं। बाबा की वो शक्ति जो हमें अनुभव होनी चाहिए वो अनुभव नहीं होती है। तो बाबा तो वैसे भोले भंडारी हैं, भोला नाथ उनको कहते हैं। तो बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि बाबा इस समय अपने सब भंडारे बच्चों के लिए खोल देते हैं। तो जो जो प्राप्ति करना चाहे उस समय, जो मन इच्छित फल बाबा से पाना चाहे, जो अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहे, वो हम कर सकते हैं। ये समय जो तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं या तमोगुणी वातावरण है वो दबा हुआ होता है, क्योंकि आत्माएं सोई हुई होती हैं, तो उनका तमोगुणी प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और प्रकृति का भी तमोगुण दबा होता है। प्रकृति भी सात्विक है और जब हम अमृत वेले उठते हैं तो हमारे मन की स्थिति भी सात्विक होती है और इसीलिए उस समय जो हमारा कनेक्शन होता है बाबा से वो सहज हो जाता है क्योंकि उसमें अन्य आत्माओं के वाइब्रेशंस के व्यवधान नहीं के बराबर होते हैं। उस समय अगर हम मन को शांति धाम में स्थित करना चाहते हैं यानी ब्रह्मलोक निवासी बनकर के हम बाबा के साथ अशरीरी स्थिति में बीज रूप स्थिति में अनुभव करना चाहते हैं तो वो अनुभव करना भी अमृत वेला सबसे सहज होता है क्योंकि स्वतः ही सोकर के रात को आत्मा अशरीरी स्थिति का अनुभव की हुई होती है। सोना माना शरीर से उतने समय के लिए डिटैच हो जाना, तो अमृत वेले वो हम सहज अनुभव करते हैं और वो अनुभव फिर हमें सारा दिन भी मदद करता है। लेकिन अमृत वेले माया भी अपना चांस लेने की कोशिश करती है क्योंकि बाबा के बच्चों के लिए वरदानी समय है तो माया सोचती है कि अगर ये इतनी कमाई कर लेंगे तो मेरे से दूर हो जाएंगे। तो फिर किस रूप में माया आती है? आलस और अलबेलेपन के रूप में। सबसे अच्छी नींद का समय वो सुबह 3:30-4 बजे का ही समय होता है और अब सर्दी का समय है तो सब रजाई ओढ़कर सोते हैं। तो अगर सोचते हैं कि रजाई से निकलेंगे तो ठंड लगेगी, कई बार गुजार दादी सुना देते क्लास में कि जो रजाई नहीं छोड़ सकते उनको रजाई नहीं मिलेगी। तो अमृत वेला रजाई तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो क्या सोचते हैं? 5 मिनट और सो जाते हैं। अभी तो गीत बजा है, उस दिन कहा ना बाबा ने मुरली में कि रिकॉर्ड से उठते हैं, रिकॉर्ड चैतन्य ठाकुरों को भगवान जगाता है, भगवान सुलाता है। सुना ना? तो शिव बाबा जगाता तो है, भगवान तो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, लेकिन आंख खुलती है, घड़ी देखते हैं तो सोचते हैं 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे और वो 5 मिनट कब होते हैं? 5 बजने के बाद। फिर देखते हैं अरे इतनी जल्दी 5 बज गए। वो अमृत वेला योग की बजाय निद्रा योग हो जाता है। फिर कई लोग उठकर तो बैठ जाते हैं, उठकर बैठते हैं लेकिन नेमिनाथ बनकर बैठते हैं। नेमिनाथ बनना माना बैठे तो हैं पर पता नहीं क्या सोचना है, क्या बाबा से रू रिहान करना है, कैसे योग लगाएं। तो मन खाली है, मन खाली है तो क्या होगा? फिर उसका स्थान धीरे धीरे कुछ मिनट में ही नींद में चले जाएंगे। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कईयों का पोज ऐसे होता है जैसे हठ योगियों का म्यूजियम होता है। तो म्यूजियम में ऐसे होते हैं ना उल्टे सीधे पैर, वो आसन जो लगाते हैं उसमें कभी हाथ ऊपर, कभी टांग ऊपर, कभी नीचे सिर नीचे, कभी सिर ऊपर। तो कई लोगों की जो पोजिशन होती है वो ऐसी एक्सरसाइज वाली होती है और छुटके आते हैं तो इतनी जोर से आते हैं कि सिर पूरा पैर तक पहुंच जाता है। और फिर बाबा ने कहा कई जगह कि लोग बच्चों की ट्यून भी सुनाई देती है वतन में। कौन सी ट्यून सुनाई देती होगी? हाँ कराटे की। हाँ सब समझदार है। फिर कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं जब सामने योग कराते हैं ना तो सीन बड़ी मजेदार होती है अमृत वेले की। तो कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं पूरा मुंह खुला होता है जैसे बाबा ऊपर से वतन से टोली देने वाला है मुंह में। ऐसा अमृत वेला हम करेंगे तो कितनी शक्ति मिलेगी? फिर हम सोचते हैं याद तो किया था बाबा को, हाँ लेकिन बाबा का वो प्यार जो महसूस होना चाहिए, वो बाबा की जो शक्तियां भरनी चाहिए वो हमें नहीं भरी क्योंकि बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती है। तो उस समय अमृत वेले जो हमें बाबा को याद करना है, वो हम अनेक स्मृतियां, जो श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति, जो पांच स्वरूपों का अभ्यास हमें बाबा कहते हैं, अगर चाहिए तो हम उससे भी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आत्मा परम धाम में, और मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप कितना शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ है, संपन्न है, संपूर्ण है, निर्विकारी है, मैं आत्मा सतो गुणे हूँ, इस तरह का चिंतन करते हुए फिर मैं ही पूछे आत्मा हूँ, हम ही देवताई स्वरूप में, और ऐसे पांचों स्वरूप का अभ्यास, तो मन का चिंतन चलता रहे, बाबा से जो हमें प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों को भी हम स्मरण करें, तो फिर हम निद्रा जीत हो जाएंगे, वो खुशी और नशा हमें अनुभव होगा। अगर नहीं मन चलता है तो फिर हम रात को मुरली पढ़कर सोएं। हम दादियों को देखते हैं, बड़ी दादी को, दादी प्रकाशमणि जी के साथ समीप रहने का बहुत बाबा ने सौभाग्य दिया, तो हम देखते थे कभी भी दादी मुरली पढ़े बिना नहीं सोती थी रात को, और सुबह उठकर के भी वो मुरली पढ़ते थे। तो रात को अगर हम मुरली पढ़कर सोए, यानी रात को हम किस अवस्था में सोए, हमारा मन किस अवस्था में रहा, उसका प्रभाव भी हमारे अमृत वेले पर आता है। कुछ लोग सोते हैं, बिस्तर पर जाते हैं तो सारे दिन भर की बातें, क्योंकि दिन भर तो काम में बिजी हैं, तो उतना तो मन कोई बातें जो सोचने की होती हैं उसमें नहीं चला, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर आए, मन फ्री हुआ, तो दिन भर की सारी बातें इकट्ठी हुई हैं, जो वो चिंतन चलना शुरू हो जाता है। तो उससे एक तो नींद भी गहरी नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई या तो चिंता होती है उसके अंदर, या कोई ना कोई व्यर्थ भाव होते हैं, कभी कभी नेगेटिव भाव भी हो जाते हैं, और उस स्थिति में हम सो गए तो सुबह भी कैसे उठेंगे, उठते ही मन उन बातों को ही सोचने लग जाएगा। सीधा हमें बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है, आंख खुलते ही कौन हमारे सामने आना चाहिए, बाबा हमारे सामने आना चाहिए। लेकिन रात को जिस स्थिति में हम सोए, सुबह की स्थिति भी पहली वही हो जाती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं चार्ट देकर सोना है। बाबा अपने मन को पुरानी बातों से खाली कर दो, सोने से पहले बाबा को सब हम सच सच जो भी सारे दिन की दिनचर्या रही वो बाबा के सामने रखा, और बाबा की याद की गोदी में सोना है। ये बाबा के श्रीमंत वो सच्चे ब्राह्मण हैं जो इस विधि पूर्वक सोते हैं, और सारे दिन की दिनचर्या का प्रभाव भी पड़ जाता है। अगर विधि पूर्वक दिनचर्या नहीं है, बाबा की श्रीमत के अनुसार हमारी दिनचर्या नहीं है, जैसे बोलना चाहिए, जैसे चलना चाहिए, जैसे खाना चाहिए, जैसे कर्म करने चाहिए, तो उसका प्रभाव भी हमारे मन की स्थिति पर रहता है, उसका असर फिर अमृत वेले पर भी आता है। अगर अमृत वेला पावरफुल बनाना है तो पूरे दिनचर्या पर हमारा अटेंशन हो। फिर कुछ भाई बहने कहते हैं हमारी तो ड्यूटी ही ऐसी है, हम बहुत थक जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, तो सुबह अमृत वेले उठना हमारे लिए मुश्किल होता है, हमारी नींद ही पूरी नहीं होती। ये भी मन अपने आप को बहाने देता है ना, रात को सोए थे, बहुत थके हुए थे, आज सो जाते हैं, या रात को सोए थे, सिर दर्द था, थोड़ा बुखार था, आज सो जाते हैं, कल से उठेंगे। तो मन और बुद्धि जो है वो भी अपना कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर रखते हैं कि सुबह हमें उठना है। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है हमारा उठने का, वैसे अगर हम योगी हैं तो 4-5 घंटे की नींद हमारे लिए काफी है, इससे अधिक नींद हमें नहीं चाहिए। अगर हम दिन में भी नहीं सोए तो भी कोई बात नहीं, अगर दिन में 1 घंटा सोने को मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है तो भी रात को अगर हम समय से सो गए और सुबह समय से उठे, तो अगर आप 10 बजे भी सोए तो आराम से सुबह 4-3 बजे उठ सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने शरीर की ही कोई ना कोई व्याधि को लेकर के उसका चिंतन शुरू कर देते हैं सुबह, तो माया तो पहले ही तैयार बैठी है सुलाने के लिए, तो वो अच्छी तरह सुला देती। और एक दिन आपने अलबेलापन लाया तो दूसरे दिन फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सोते रहेंगे। और फिर ऐसे ही आदत बन जाती है कि अमृत वेला फिर वैसे ही होता है। और हम सब महसूस करते हैं जब हम अमृत वेला करते हैं और जब हम नहीं करते हैं, कितना अंतर हो जाता है उस समय हमारी स्थिति में। पर अगर मिस हो गया, किसी भी कारण से मिस हो गया मानो, तो फिर ये भी नहीं कि हम सारा दिन पश्चाताप करते रहें, मेरा अमृत वेला मिस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बाबा कहते हैं नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको भी बहुत नहीं सोचना है। लेकिन आगे के लिए फिर अपने को सोने से पहले दृढ़ संकल्प देना है, या बाबा को संकल्प देकर सो जाओ कि बाबा मुझे उठना ही है और आप मुझे उठाएंगे। तो अगर दृढ़ संकल्प है तो फिर उठेंगे। और ब्राह्मण की तीसरी विशेषता है जो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। ब्रह्मा भोजन माना बाबा की याद में बनाया हुआ और बाबा को भोग लगा करके जो हम स्वीकार करते हैं वो ब्रह्मा भोजन है। ऐसे नहीं कि सेंटर पर किसी किसी दिन जो ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं सिर्फ वही ब्रह्मा भोजन है। हम अपने घरों में जो भोजन बनाते हैं वो ब्रह्मा भोजन है या नहीं है? बाबा की याद में बनाया है, बाबा को भोग लगा करके हम खा रहे हैं तो वो ब्रह्मा भोजन है। तो ब्रह्मा भोजन शुद्ध सात्विक भोजन तो है ही है, यानी उसमें लहसुन प्याज नहीं होता। हम सब जानते हैं हमारे खान पान की मर्यादा क्या है, और उसमें बाहर का किसी का बनाया हुआ भोजन भी नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर भी हम नहीं खाते। बाबा कहता है ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन है, इसीलिए कहा जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न शुद्ध है, सात्विक है, तो मन भी शांत शुद्ध और सात्विक स्वतः होता है। मन परमात्मा में स्वतः सहज एकाग्र होता है, और साथ ही ब्रह्मा भोजन हमारे तन और मन के कष्ट भी हरने वाला है। आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर बहुत प्रयोग करके सिद्ध कर दिया। हम सुनते हैं ना कि जापान के एक वैज्ञानिक है मसारू इमोटो, उन्होंने पानी के ऊपर कुछ प्रयोग किए अपनी लेबोरेटरी में। तो पानी के कई सैंपल लिए उन्होंने और अलग अलग फीलिंग्स उन पानी के सैंपल में दी, जो हम चार्जिंग करना कहते हैं। तो जैसे एक पानी के सैंपल के ऊपर उन्होंने लिखा लव, यानी उसमें प्रेम की भावनाएं, जो भी हम प्रेम के बारे में महसूस करते हैं उस रीति से उस पानी को देखना है। फिर एक गिलास पर उन्होंने लिखा कंपैशन, यानी मर्सी, रहम की भावना। एक गिलास पर उन्होंने लिखा नफरत की भावना, हेट्रेट। एक पे लिखा बदले की भावना। ऐसे कई अलग अलग फीलिंग्स के वो गिलास और उस तरह की फीलिंग्स उस पानी को दी गई, और फिर उसकी जांच की गई, उसे फ्रीज किया, माना उसको बर्फ जमा दिया, और बर्फ जमाने के बाद उसके क्रिस्टल की जांच की गई। तो देखा गया कि जो पॉजिटिव फीलिंग्स वाले गिलास थे उनके जो क्रिस्टल थे वो बहुत ऑर्गेनाइज थे, सुंदर थे। लेकिन जो नेगेटिव फीलिंग्स वाले गिलास का पानी था उसके जो क्रिस्टल थे वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज थे, उनकी कोई शेप ही नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी फीलिंग्स का असर तत्वों पर आता है, जल भी एक तत्व है ना, और हमारा कोई भी भोजन बिना जल के तो नहीं बनता है। और जब हम वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बाबा की याद के वाइब्रेशंस, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस जब भोजन को देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। और इसीलिए आज तो इस प्रकार के कई प्रयोग भी करते हैं कि अगर हमें पानी का गिलास भी पीना है तो कैसे पीना है, बाबा की याद में कोई ना कोई शुद्ध संकल्प देकर के हमें पानी को पीना है, या चाय भी पीनी है। और साथ साथ में ये तो ऐसे भी हमारे योग में भी, चार्ट में भी आ जाएगा कि हमने पानी पीते हुए भी बाबा को याद किया, भोजन करते हुए भी बाबा को याद किया। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि भोजन करने बैठे, भूख लगी है और बहुत जल्दी जल्दी बिना बाबा को याद किए खा लिया। फिर बाद में याद आया, अरे बाबा को तो याद नहीं किया, ऐसे ही खा लिया। ऐसे सुनाते हैं दादियां कई बार, साकार बाबा के समय की बातें सुनाते हैं। तो सुनाया कि एक बार बाबा ने सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाई, जैसे यहाँ भी खिलाते हैं ना मधुबन में, कभी कभी आइसक्रीम मिलती है सभी को। तो दादा आनंद किशोर थे, जो ओम मंडली के टाइम के अपने एक दादा थे, कुछ भाई थे ओम मंडली में, उनमें एक दादा थे दादा आनंद किशोर। तो उनको बहुत आइसक्रीम पसंद थी, तो जैसे ही आइसक्रीम उनके हाथ में आई उन्होंने तुरंत उसको खाना शुरू कर दिया। और बाबा ने देख लिया, बाबा समझ गए कि बच्चे ने बाबा को याद नहीं किया और आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। तो बाबा ने सबसे पूछा, बच्चे किस किस ने आइसक्रीम खाने से पहले बाबा को याद किया? तो जिन्होंने किया उन्होंने हाथ उठा दिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया था तो फिर वो चुप रहे। तो बाबा ने बोला कि बाबा को याद नहीं किया, वह बाबा भूल गया, आइसक्रीम में बुद्धि चली गई, बाबा भूल गया। तो बाबा ने कहा, ये आइसक्रीम छोड़ दो, अभी दूसरी आइसक्रीम मंगाते तुम्हारे लिए, बाबा को याद करके फिर खाओ। तो मतलब बाबा, ब्रह्मा बाबा भी इतना विशेष अटेंशन खिंचवाते थे कि बाबा को याद किए बिना, उसको वाइब्रेशन दिए बिना कुछ भी चीज नहीं खाना। कई भाई बहने कहते हैं, हमें तो मजबूरी होती है, हम जाते हैं अपने परिवार में, शादी ब्याह में जाते हैं, कोई अवसर होता है, खाना पड़ता है, नहीं खाएंगे तो हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, वो हमें कहते हैं तुम हमको क्या समझते हो, हमने तो इतनी शुद्धि से ये भोजन बनाया है तो क्या करेंगे, रिश्तेदारों को नाराज करेंगे नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, कभी कभी, कभी कभी तो खा सकते हैं, कभी कभी जाते हैं शादी ब्याह में रिश्तेदारों में, हाँ तो रोज तो ब्रह्मा भोजन ही खाते ना, कभी खा लिया उनके यहाँ तो क्या फर्क पड़ता है, क्या बोलेंगे, हाँ क्या कहेंगे? बच्चे ब्राह्मण कहेंगे कि कभी ब्रह्मा भोजन खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो वो लोक लाज समझते हैं कई भाई बहने, फिर उस लोक लाज में थोड़ा सा ज्यादा चले जाते हैं कि ये तो हमें समाज की है ना मर्यादा, लोक लाज है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें तो इसी समाज में रहना है, आज उनके यहाँ है कल हमारे यहाँ भी होगा, नहीं तो कौन आएगा हमारे यहाँ। लेकिन बाबा कहता है, आपने 63 जन्मों तक इस लौकिक की कुल मर्यादा को, लोक लाज को निभाया है, अब एक जन्म जो परमात्मा हमें मर्यादाएं देते हैं, जो नियम देते हैं, उन्हें हमें निभाना है। तो उससे तो हमने गंवाया है, धोखा ही खाया है, लेकिन ये जो निभाना है ईश्वर को, ये हमें जन्म जन्म की अविनाशी प्राप्तियां कराने वाला है। तो क्या करना है, थोड़े समय का ही है ना, तो अपना प्रबंध कर सकते हैं हम। हमें शादी ब्याह में जाना है, आजकल तो कोई बहुत ज्यादा बंधन नहीं होता है, बुफे सिस्टम होता है, आपको जो खाना है खाओ, जो आप खा सकते हो, सलाद खा सकते हो, आप फल खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, ऐसी चीजें जो कुछ मशीन मेड होती हैं वो आप खा सकते हो। दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में भी किसी का व्रत होता है ना, तो हम उनको कुछ खिलाना चाहेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं आज नहीं, आज माफ कर दीजिए, आज मेरा व्रत है, आज नहीं खा सकते हम। कितनी भी अच्छी चीज, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हम उनके सामने रखेंगे, खा लेंगे क्या, अपना व्रत तोड़ते हैं? तो हम भी बता सकते हैं ना कि इस जीवन में हमने व्रत लिया है कि हमें शुद्ध भोजन ही करना है, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन ही करना है, तो हम अपना व्रत नहीं तोड़ सकते, आप हमें ये खिला सकते हो, हम ये खा लेंगे, आप ये खिलाएंगे। तो कोई भी बुरा नहीं मानता है, सबको पता होता है कि अगर किसी ने व्रत लिया है तो हमें उसको सहयोग देना है, उनको व्रत तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना है। तो कहीं हम ही कमजोर पड़ जाते हैं, अगर हम अपनी मर्यादाओं में पक्के होते हैं तो सामने वाले पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, उनको भी प्रेरणा मिलती है कि देखो कैसे भी परिस्थिति में ये अपने नियम पर अटल हैं। तो अगर ये कर सकते हैं, इतनी हिम्मत रख सकते हैं घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए, तो हम भी कर सकते हैं। फिर वो पूछेंगे क्या फायदा होता है इससे, फिर हमें अवसर भी मिलता है ज्ञान सुनाने का उनको। तो इसीलिए दूसरों के कारण अपने नियम में ढील नहीं लाना। फिर कुछ कहते हैं हमें सफर पे जाना होता है हमारे, तो टूर होते हैं तो हम कितने दिन का खाना ले जाएंगे। तो बाबा कई बार कहते हैं मानो ऐसी नौकरी है, सबकी तो नहीं होती पर मानो किसी की ऐसी नौकरी है कि बार बार जो है वो टूर पर जाना पड़ता है। तो फिर कुछ ऐसी चीजें जो बनाई जा सकती हैं, जो ज्यादा दिन तक नहीं खराब होती हैं। फल तो सभी जगह मिलता है, ब्रेड की कई बार बाबा छुट्टी दे देते हैं कि अगर बहुत मजबूरी है तो बाजार में जो ब्रेड मिलती है वो ब्रेड उसको यूज कर सकते हैं, और बाबा की याद में मजबूरी है तो ऐसे नहीं कि फिर उसको अपना वो ही बना लें, एक्सक्यूज ही बना लें। तो ब्रह्मा भोजन ही खाना है, ये सच्चे ब्राह्मणों की विशेषता, सदा बाबा की याद में बनाना है और बाबा की याद में यानी भोग लगा करके ही खाना। और चौथी विशेषता है ब्राह्मणों की, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते। तो हम सभी जानते हैं ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता है, फाउंडेशन है पवित्रता। और पवित्रता के लिए बाबा ने हमें बहुत सहज विधि दी है। दुनिया जिसे बहुत मुश्किल समझती है, मुश्किल क्या असंभव ही समझती है, वो हमारे लिए सहज संभव हो गया ज्ञान के आधार पर, जो बाबा ने हमें हमारी सत्य पहचान दी। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ और जो भी मेरे संपर्क में आते हैं वो सभी आत्माएं हैं, और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, एक ही पिता की हम संतान हैं। तो भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन भी नहीं, शारीरिक नाते से भाई बहन है लेकिन आत्मिक नाते से हम सब कौन है? भाई भाई हैं। तो बाबा ने हमारी भाई भाई की दृष्टि, जो आत्मिक दृष्टि वृत्ति है वो शुद्ध दृष्टि वृत्ति है, और जब उस दृष्टि वृत्ति से हम संपर्क में आते हैं तो जो देह की आकर्षण है उससे हम न्यारे होते। इसलिए बाबा कहते हैं देखो ही भ्रकुटी में, किसी की देह की तरफ नहीं देखना है, जहां आत्मा है आत्मा के स्थान को ही देखना है। और अगर शरीर को देखा तो शरीर से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि संस्कार हैं, 63 जन्मों के देह अभिमान के संस्कार हैं, तो किसी की पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाएंगे, किसी के रंग से प्रभावित हो जाएंगे, किसी के नैन नक्श से प्रभावित हो जाएंगे, किसी के बोल चाल से प्रभावित हो जाएंगे। कितनी चीजें प्रभावित करने वाली होती हैं, किसी के हाव भाव से प्रभावित हो जाएंगे। और अगर बाबा ने कहा देह को टच किया तो देह को टच करना माना सांप को टच करना है। सांप को टच कर दिया तो काटता है सांप, और सांप काटता है तो उसमें विष होता है, और वो विष ना फैले ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर बुद्धि देह की तरफ गई तो फिर पवित्रता की स्थिति पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं देह की तरफ नजर जानी ही नहीं चाहिए, आत्मा को ही देखना है, आत्मा से ही व्यवहार में आना है। हालांकि दिखाई न देने वाली चीज है, शरीर तो दिखाई देता है ना, आत्मा न दिखाई देने वाली चीज है, लेकिन दिव्य बुद्धि का अर्थ क्या है? दिव्य बुद्धि तीसरा नेत्र, उसकी ये पावर है कि जो नहीं दिखाई देने वाला है उसको भी हम अनुभव करते। फिर बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई कि मेरा निजी स्वरूप शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ ही आदि अनादि शुद्ध और पवित्र, और एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक हम शुद्ध पवित्र पूज्य आत्माएं रहे। किस जन्मों तक? देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, तो ये स्मृति से हमें समर्थि आ गई कि हम थे और हम ही बनने वाले हैं। तो हमने हिम्मत रखी और बाबा ने हमें मदद की, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो आज घर गृहस्थ में रहते हुए भी, साथ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं, तो महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले बन गए। बाबा ने कहा जो आज के महात्माएं हैं उनको भी चैलेंज करते हैं कि वो कहते हैं आग और कपास साथ में नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ तो रह सकते हैं क्योंकि बीच में बाबा है। बाबा ने अभी कल ही मुरली में कहा, कल परसों की मुरली में था, रमेश भाई और उषा बहन जी का उदाहरण दिया, युगल हैं और परिवार में रहते हैं लेकिन फिर भी पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा कि उनको ये स्मृति है कि अगर हमने कोई गलती की तो हमारी जो 21 जन्मों की रजाई है वो चली जाएगी। तो प्राप्ति का भी हमें बाबा ने आधार दिया कि पवित्रता से कितनी बड़ी प्राप्ति है कि हम भविष्य में विश्व के मालिक बनने वाले हैं, रजाई पद प्राप्त करने वाले हैं इसके आधार पर। और जब किसी को बहुत बड़ी प्राप्ति होती है तो वो इतने भी मुश्किल कार्य कर सकते हैं। प्राप्ति जो होती है वो उसके लिए प्रेरणा होती है। दुनिया में भी कुछ लोग पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन उनकी जो विधियां हैं वो परमात्मा विधियां नहीं है। वो अपनी रीति से कोशिश करते हैं, जो सन्यासी हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने अपनी पत्नी को शारदा माँ कहा। महात्मा गांधी को भी आजादी के समय जब महसूस हुआ कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तो उन्होंने अपनी पत्नी को कस्तूर बा कहा। गुजराती में बा को माँ कहते हैं, उन्होंने भी उसको माँ का दर्जा दिया। वो मानते थे कि माँ के प्रति जो नजर होती है वो बहुत ऊंची नजर होती है। तो हम बच्चों की भी, बाबा हमें ये विधि का आधार तो नहीं, बाबा का तो विधि बिल्कुल ही न्यारी है। कहते हैं भगवान की गतमत बिल्कुल न्यारी है क्योंकि वो तो हमें सत्य ज्ञान दे देते हैं, लेकिन हमारी आई शिव आई रहे। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य के पालन तक ही सीमित नहीं रखी बाबा ने, मन वचन कर्म तीनों स्तर पर हमारी पवित्रता हो, यानी आंखें भी, इसको बाबा कहता है हमारी दृष्टि भी क्रिमिनल ना हो, दृष्टि वृत्ति भी चंचल ना हो। फिर उसके भी आगे बाबा कहता है संपूर्ण निर्विकारी बनना, और बाबा कई मुरलियों में तो इसे बहुत मैं कहूंगी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि एक बार जब हम उसे सुन लें या पढ़ लें तो दूसरी बार हम अपने लिए खुद ही सावधान हो जाएंगे। कि बाबा कहते हैं अगर इस ईश्वरीय परिवार में भी कोई बहन या भाई के प्रति ऐसी नजर हमारी जाती है कभी, तो ये महा महा पाप है और इसके लिए धर्मराज कभी भी रियायत नहीं दे सकता। जो भी भाई बहन हैं वो सब त्यागी तपस्वी और सेवाधारी हैं। बाबा ने ये विशेषता उनमें भरी है। अगर उनमें कोई अच्छाई भी है, जो भी भाई बहने इस अलौकिक परिवार के दैवी परिवार के हैं, तो क्या अच्छाई है उसके अंदर? वो अच्छाइयां कहाँ से आई, किसने भरी, वो गुण किसने भरे, किसने भरे? बाबा ने भरे ना। तो देने वाला दाता कौन है, वो विशेषताएं देने वाला कौन है? बाबा है। हमारे स्नेही हैं, हमारे सहयोगी हैं, सेवा के साथी हैं, सेवा के कारण संबंध है। कई बार हम थोड़ा उसको शुद्ध नाम देते हैं, सेवा के कारण समीपता है, सेवा के कारण संबंध है, फिर इनके बिना तो सेवा मुश्किल है। इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो ज्ञान किसका अच्छा है? ज्ञान तो बाबा का अच्छा है, सुनाने वाला किसका ज्ञान सुना रहा है? बाबा का ही ज्ञान सुना रहा है ना। तो बाबा ही याद आए। बाबा कहता है अच्छाइयों की खुशबू लो, उसकी मना नहीं है, भगवान हमें इतना ऊंचा श्रेष्ठ बना रहा है तो अच्छाइयां तो है ही है ना, अच्छाइयां तो दिखाई देंगी ही है तो। लेकिन उन अच्छाइयों को देखते हुए मुझे भी अच्छा बनना है, वो मेरे अंदर कैसे आ जाए। हम प्रभावित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अच्छाई हमारे अंदर नहीं है। अगर मेरे अंदर होती तो हम नहीं प्रभावित होते, पर हमारे अंदर कहीं नहीं है तभी हमें उसकी अच्छाई आकर्षण कर रही है। तो अगर कर रही है तो मुझे उसके जैसा अच्छा कैसा बनना है वो सोचे हम, ना कि उनके प्रभाव में आ जाए। यहां तक कि कामना में आ जाना, कामना भी काम विकार का अंश है, इसको बाबा कहते हैं। किसी भी प्रकार की इच्छाएं रखना वो भी काम विकार का अंश है। तो प्यूरिटी माना बाबा ही संसार है, कंपेनियन और कंपनी यानी सर्व संबंध एक बाबा से है। तो ये ब्राह्मणों की विशेषताएं हैं कि एक बाबा से ही हमारे सर्व संबंध है, हमारे जीवन का आधार एक बाबा ही है, कोई व्यक्ति वस्तु वैभव नहीं। तो इतनी ऊंच श्रेष्ठ जीवन बाबा हमारी बनाता है, जिसको बाबा कहता है प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। ये केवल ब्राह्मणों की ही हो सकती है, दुनिया में और किसी की ये पर्सनालिटी नहीं हो सकती। दुनिया में कई पर्सनालिटी वाली आत्माएं हैं, बहुत प्रसिद्ध आत्माएं भी हैं, लेकिन जो रूहानी पर्सनालिटी है, जो रूहानी रॉयल्टी है, वो सिर्फ ब्राह्मणों की ही विशेषता है। तो संपूर्ण निर्विकारी माना किसी भी विकार का अंश वंश भी हमारे अंदर ना हो। अगर विकार का अंश वंश भी आता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, फिर इसका तो बहुत विस्तार है, लेकिन अंश भी है तो भी वो अपवित्रता है। उसके भी आगे बाबा कहते हैं जो बाबा ने हमें दिनचर्या दी है अमृत वेले से रात तक, अगर उसमें भी हम ऊपर नीचे करते हैं, यानी उसमें भी हम अलबेले हो जाते हैं, कभी कर लिया कभी नहीं किया, जितना हो गया कर लिया, तो वो भी अपवित्रता का अंश है। इसके भी आगे बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प चलते हैं मन में, वो भी अपवित्रता है। और यदि दुख का अनुभव होता है, जैसे कहा पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो अगर दुख का अनुभव होता है अशांति का अनुभव होता है तो वो भी अपवित्रता है। कहीं ना कहीं मन में अपवित्रता आई, इसीलिए अशांति हुई, इसीलिए दुख आया। तो ये पवित्रता की इतने स्टेप्स हैं, इसकी महीनता बाबा हमें समझाते हैं। और पवित्रता को लेकर के हम देखते हैं कितने विघ्न यज्ञ में शुरू से आए हैं। शुरू शुरू में बाबा को लोग कहते थे बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, सिर्फ एक चीज आप हटा दो इसमें से, आपका सत्संग में भीड़ लग जाएगी, लाखों लोग आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं खुद भी हीरे जवाहरात का व्यापारी था, और वो जो आता है वो भी हीरों का ही व्यापार करना चाहता है, तो इसलिए मैं नहीं कहता हूं, ये तो परमात्मा का आदेश है। आज भी पवित्रता के कारण ही कईयों के ऊपर विघ्न आते हैं, लेकिन हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद मिलती है, और उस धारणा से, पवित्रता की धारणा से अनेक आत्माओं की सहज सेवा हो जाती। फिर पांचवा ब्राह्मणों की विशेषता है जो प्रतिदिन ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, यानी मुरली सुनना, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना, गॉडली स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करना और कराना, न सिर्फ स्वयं सुनना लेकिन दूसरों को भी सुनाना। दुनिया में भी जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं उनका भी ये काम होता है कि वो कथा वाचन ही करते हैं, जहां जाएंगे कथा ही करनी है उनको। तो बाबा ने हमको अभी कल की मूली में था, संडे की मूली में, स्वयं भगवान स्वयं शिव बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मुरली नहीं चलती हो। और जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां तो फिर भी छुट्टी हो जाती है, संडे की छुट्टी हो जाती है और त्योहारों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कभी छुट्टी होती है? तो शिव बाबा अपने को पढ़ाने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में कितने पंचुअल हैं, लेकिन हम इस ईश्वरीय पढ़ाई के प्रति कितने पंचुअल हैं? क्या हम नियमित पढ़ाई पढ़ते हैं? और रोज पढ़ाई पढ़ना, माना बाबा कहता है मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। और सिर्फ पढ़ाई पढ़ना ही नहीं, लेकिन उसे समाना और स्वरूप में लाना। एक होता है सुनना, सुनकर हम खुश होते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई, बहुत अच्छा कहा। फिर पूछेंगे क्या कहा, सोचने लगेंगे क्या कहा, याद नहीं है। मुरली सुनने के 2 घंटे बाद अगर कोई आपसे पूछ ले आज बाबा ने क्या कहा, कितना सुना पाएंगे? पूछे आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी एकाग्रता से मुरली सुनी। तो हम बैठे तो हैं, जैसे कहा ना नेमिनाद बन जाते हैं, नियम है हमारा, ब्राह्मण है, मुरली हमें सुनना ही है, तो हम सुन रहे हैं, लेकिन आधा टाइम सुन रहे हैं, आधा टाइम बुद्धि और जगह भी चक्कर लगा रही है। कभी कोई बच्चे की बात याद आ गई, कोई काम की बात याद आ गई, या किसी ने कुछ कह दिया वो याद आ गया, कुछ हो गया वो, कुछ ना कुछ वो भी बुद्धि में चलता रहता है। तो हमने उतना टाइम मिस कर दिया तो हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती। मुरली सुनना माना अपनी आत्मा रूपी बैटरी को शक्ति से भरना। इतना बाबा उसमें हमें, बाबा कहते हैं जैसे वो माजून है, हमें इस तरह की बातें, इस तरह के पॉइंट्स मुरली के द्वारा मिलते हैं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से मन हल्का हो जाता है। तो अगर हमने एकाग्रता से मुरली सुनी तो 2-3 घंटा उसका प्रभाव जरूर रहता है। कोई उस समय बात आएगी तो हम बहुत धीरे से बात करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, प्यार से बोलेंगे, क्योंकि बैटरी चार्ज है। फिर धीरे धीरे कामों में लग जाते हैं, कामों में लगते ही वो डिस्चार्ज होने लगते हैं और फिर कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस भी होने लगते हैं, तो फिर पुराने संस्कार काम करने शुरू कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहता है विचार सागर मंथन करो, मुरली को रिवाइज करो, छोड़ नहीं दो, सुबह सुना बस हो गया नहीं, शाम तक तो पूरी तरह पुराने संस्कारों के ही प्रभाव में हो जाते हैं अगर हमने मुरली को फिर से मनन नहीं किया, चिंतन में नहीं लाया। इसलिए कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि जो रॉयल लोग होते हैं वो 2 बार स्नान करते हैं। तो तन के स्नान की बात अलग है, लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञान स्नान, ये ज्ञान स्नान भी हमें कम से कम 2 बार तो जरूर करना। और बड़ी दादी जी को हम देखते थे, प्रकाशमणि दादी जी 4 बार मुरली पढ़ते थे। इतनी भी हमारी दादियां रही हैं मुरली से अटूट प्यार, उनके पढ़ने की और कोई रुचि नहीं, पढ़ने का जब भी समय मिलेगा मुरली हाथ में होगी। तो मैं कई बार सोचती थी कि दादी ने तो ये मुरली कितनी बार सुनी है, ये ओम मंडली के समय से यज्ञ में है, इतनी बार मुरली रिवाइज हुई है, फिर भी दादी मुरली 4 बार पढ़ती है। तो 4 बार मुरली पढ़ेंगी ना तो मुरली पूरी छप जाएगी, हमें एक एक पॉइंट याद होगी, और जो स्मृति में है वही कर्म में आएगा। अगर स्मृति में नहीं है तो वो कर्म में नहीं आ सकता, तब वो पावर बनती है। अब आज बाबा ने कौन सी धारणा की बात कही मुझे याद ही नहीं, तो क्या सारा दिन मैं उसको धारणा में लाऊंगी? मानो आज मुरली में बाबा ने कहा गुस्सा कम करो, मिसाल के लिए बाबा कई बार कहता है मुख में मुलारा डाल दो, अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो आप मुख में मुलारा डाल दो, माना चुप रहो, बोलो ही नहीं। अब मुझे वो पॉइंट याद ही नहीं है, तो जब कोई मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, कोई बात कहेगा, तो मैं चुप रहने वाली हूँ? बाद में याद आएगा कि आज तो बाबा ने ऐसे कहा था। तो जो बाबा ने कहा उसको उसी दिन यूज करना, उसी दिन धारणा में लाना, उसी दिन व्यवहार में लाना। तो अगर हमने वो हिम्मत रखी ना तो फिर बाबा की मदद से वो हमारे लिए हमेशा की धारणा बन जाती है, फिर हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ हो जाता है हमारा। तो केवल थ्योरी नहीं लेकिन उसको प्रैक्टिकल में भी लाना है, जो ज्ञान हम सुनते। फिर कई भाई बहने सेंटर पर रोज नहीं आ सकते हैं तो चलो गुरुवार चले जाएंगे, रविवार चले जाएंगे, बाकी दिन तो आजकल आसानी से मुरली मिल जाती है, मोबाइल में मिल जाती है, टीवी में मिल जाती है, और भी जिस भी तरह से चाहे मुरली तो मिलना मुश्किल नहीं है, तो घर में मुरली पढ़ लेते हैं। तो घर में मुरली पढ़ना और सेंटर पर मुरली सुनना, उसमें बहुत अंतर है। आप घर में मुरली सुन रहे हैं, मानो टीवी पर सुन रहे हैं या जो भी व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं, उस समय किसी ने आपसे कोई बात करना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे? बात कर लेंगे, उतना मिस। कोई मिलने वाला आया हम उससे मिल भी लेंगे, या मानो कोई काम याद आ गया तो उठकर वो काम भी कर लेंगे, मुरली भी चल रही है। किसी ने फोन कर दिया उस फोन पे भी हम बात कर लेंगे, मुरली भी चल रही है। अब कितनी मुरली सुनी हमने, कितनी सुनी, फिर हमने हाँ मुरली मिस नहीं की, हमने मुरली तो पढ़ ली है, मुरली तो हमने सुन ली है। वो एकाग्रता नहीं हुई ना, तो क्या सुनी, वो एक शब्द भी नहीं गया अंदर, एक कान से सुना है और दूसरे कान से बाहर, वो स्थिति होती है। लेकिन जब हम सेंटर पर आते हैं तो सेंटर का वातावरण वो हमें सहयोग देता है, संगठन हमें सहयोग देता है और हम एक ही कार्य, मानो मोबाइल भी है हमारे पास तो हम उसको साइलेंस में रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे किसी को डिस्टरबेंस ना हो। तो मोबाइल भी एक तरफ होता है, घर की कारोबार तो है ही अलग, घर में तो है ही नहीं। तो पूरी एकाग्रता से कोशिश करें मन की भी पूरी एकाग्रता बने। जैसे मैंने कहा ना, मन की एकाग्रता कई बार नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम बैठे हैं और पूरी एकाग्रता से हम मुरली सुनते हैं तो फिर वो हमारी फुल चार्जिंग होती है, उसकी छलक फलक हमारे चेहरे पर भी दिखाई देती है। मुरली सुनकर हम जाते हैं तो सहज ही प्रसन्न चित्त दिखाई देते, चेहरा ही बदल जाता है, कोई बात भी होती है मन में वो बात भी जैसे कर जाती, महसूस करते ना बाबा हमें हमारे दिल की बातें, दिल की उलझने, उन सब का जवाब मुरली में दे देते हैं। तो मुरली भी हम विधि पूर्वक सुने, ऐसे नहीं कि यहाँ सिर्फ नियम निभाना है इसलिए चलो, ये भी ब्राह्मण जीवन का आधार है। यहाँ भी एक दिन भी अगर मुरली नहीं सुनी तो कैसी स्थिति हो जाती है, कहीं ना कहीं माया का असर मन पर आने लगता है। और अगर आपने चार दिन, पांच दिन, एक हफ्ता मुरली नहीं सुनी और माया आपको ना खींचे, ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं आप देह अभिमान में आकर ऐसी भूल कर जाएंगे। और इसीलिए बाबा ने ये जो नियम हमें दिए, रोज अमृत वेला उठना, रोज मुरली सुनना, ब्रह्मा भोजन खाना, इस कलयुगी तमो प्रधान वातावरण में रहते हुए भी पवित्र जीवन जी पाना हमारे लिए, हम ब्राह्मणों के लिए संभव है। और विशेषता है ब्राह्मण जीवन की, ब्रह्म लोक को याद करना। केवल ब्राह्मण ही अपने घर को जानते हैं, हमारा घर इस साकार लोक से परे, सूक्ष्म लोक से पार परम धाम है। और उस परम धाम में देह और देह की दुनिया से न्यारा होकर के, अशरीरी स्थिति में स्थित होकर के बाबा के साथ का अनुभव करना, ये ब्राह्मण ही कर सकते हैं दुनिया में, और किसी को ये ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए रोज अपने मन को अशरीरी स्थिति में स्थित करना ही है, मन को परम धाम में ले जाकर के बाबा के साथ का अनुभव करना ही है, जिसे हम कहते हैं रोज हमें योग भी करना है। और केवल एक घंटे दो घंटे का योग नहीं, ये हमारा योगी जीवन ही है। जितना हो सके जब भी हमें समय मिलता है हम कर्म योगी बन करके कर्म करें। तो इन ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को हम सहज स्मृति में रखेंगे और सहज हम अपने पुरुषार्थ में यूज करते रहेंगे तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सहज ही हम संपन्नता और संपूर्णता की मंजिल, जो बाबा कहता है बाप समान बनना, उस मंजिल पर हम समय से पहले पहुंच जाएंगे। ओम शांति।
दिल का अरमान है योगी जी। तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही